So, brothers in the Sangha, Jai Bhim. Our retreat has got off to quite a good start. And there was quite good silence last night. Unfortunately, the dogs weren't quiet. And they woke me up. And I think I heard a tiger. So, well, tigers are about, at least in our minds. And, well, we need to be very vigilant. Just the usual exhortation to be more careful with silence. I said last night we'd have silence after the puja. Some people, they didn't even get outside the shrine room before they started talking. Which means it's not so nice for everybody else, not so quiet for everybody else. And I had to ask two or three people just to be quiet this morning. I know it's difficult to remember, but it will make a big difference if you can observe silence. It'll make it much easier for you to work on your mind. And if you don't feel interest in keeping silence for yourself, well, think about other people. If you don't keep quiet, will you fill other people's heads with your talk? And I just ask the community if they could be quiet when they're around retreatants. I know that you can't keep quiet all the time. But please, when you see retreatants, just keep quiet. And please, don't talk to the retreatants. So in this way, our retreat will go deeper and deeper. Now, I've been thinking about my experience here in India over the last 5 weeks. I've been here since the beginning of December. I've been mainly, well, I've been entirely in Vidarbha. But I've talked to a lot of order members in that time. And I've been thinking about, well, what happens when people talk to me? Well, I would say that probably about 50% of the time, there's complaints. So about 50% of people who come to see me want to complain. And while I was thinking about this, people want to complain. Maybe they even need to talk about their complaints. But I wanted to think, well, what do I feel about this? First of all, people complain about what others have done to them. So one order member comes and says, those people forced those people to vote against me in the elections. They complain about what other people have done. That I hear in Pune. Nagpur, people complain that others are saying they don't work properly. So I hear complaining words. And then quite often there's complaining about thoughts. There's complaining about other people's thoughts. He's against me. So in this way, there's complaining about other people's thoughts, words and deeds that hurt. But there's another kind of complaining that comes. People come to me because they're disillusioned when they see other people's behavior. They say, well, I see those order members there, they're fighting each other. I joined the Sangha, I thought it was going to be harmonious. And there they are, fighting each other. And so I think to myself, well, why am I in this Sangha? I could join RPI or Congress Party if I wanted to be part of fighting. Or they come and they say, well, I've seen these dharmacharis, they're behaving wrongly, they're involved in misconduct. They're talking to ladies. Or they're doing corruption. So people say, well, I joined the Sangha because I hoped it was going to be a moral society. But people are doing these bad things. Or they say, these people, they don't meditate. These order members, they're not meditating. They don't do anything at the center. They don't wear their blue shirts. And they're not really acting like proper order members. So they say, well, I joined this Sangha so that we could practice spiritually and work together. So in this second kind of complaining, people are expressing their disillusionment. They had high hopes for the Sangha. But those hopes are not fulfilled for them. So there are these two kinds of complaining. We feel hurt by other people, or we feel other people have let us down. They haven't lived up to the ideals which we thought we shared with them. Now, I find it's very difficult when people come to me with these sort of complaints. Obviously, I feel for people's pain. I can see that people coming feel very hurt and upset. So I can empathize with them. I can feel for them. I have feelings like that myself. But what can I do? I can't sort things out. If somebody's quarreling with you, I can't stop them. If somebody's doing something wrong, I can't punish them. If people aren't meditating, I can't make them meditate. Of course, I can do what I can to empathize. I can appreciate the feeling that people have. But I can't do much more than that. I can't change other people's behavior. I can do what I can to encourage and inspire. But it's up to the individuals themselves. So I find this quite difficult when people come to me with their complaints. I don't know what I can do to help. Sometimes I can do something, but very often I can't really do anything at all. And actually, I do fully understand how people feel. I feel like this sometimes too. I complain to other people. Other order members, hurt me. Sometimes people do things that cause me pain. Sometimes when I look at the way some other order members behave, I think, well, is this the order? And I feel, well, do I really want to be part of a sangha where people behave like this? So I know what you feel. If you find yourself wanting to complain about being hurt or disillusioned, well, I feel like that sometimes too. And of course, if you go on thinking like that, you just have to leave the order. Because the order doesn't mean anything anymore. The order is so painful to you, well, you just want to go away. So I was thinking, well, how do I work with that pain? How do I work with the fact that sometimes order members hurt me? How do I work with the fact that sometimes order members don't behave as I think order members should behave? Well, I first of all should confess. Sometimes I just complain. I just say, oh, look at the way they're behaving. Look what they've done to me. But then I find that just makes me more and more unhappy. I just feel more and more disillusioned, more and more unhappy. So what I think is that what I try to do is go on to another level. I try to look at it from a completely different point of view. I try to jump above that level. You know how different things can look when you go up high. It's very interesting when you fly in an aeroplane. Just in a week's time, I shall be flying right over the top of Bordaran Retreat Center. So right now, I'm here in the center. And I'm right involved with things here. But in a week's time, I shall be over the top of the center and waving down at Aditya Kumar and the community members.
लेकिन एक सप्ताह के पश्चात इस केंद्र के ऊपर से मैं जाऊंगा और वहां से मैं हाथ हिलाऊंगा आदित्य कुमार और ये जो केंद्र के लोग
होंगे. When I'm looking down, well, it'll all look so different.
लेकिन जब मैं नीचे देखूंगा तो सब कुछ अलग दिखाई देगा.
So it's the same. This is what you need to do spiritually.
तो यही बात है आध्यात्मिक रूप से आपको करने की.
You need to go on to another level.
आपको अलग स्तर पर जाने की जरूरत है.
So that everything looks different.
तो सब कुछ जो है वो अलग दिखाई दे.
So what is this going on to another level?
तो अलग स्तर पर जाना ये क्या है?
From what level to what level do we need to go?
तो किस स्तर तक जाने की हमें आवश्यकता है?
Well, we have to go from an essentially selfish point of view.
तो हमें जो भी एक प्रकार से हमारा स्वार्थ का जो दृष्टिकोण होता है, स्वयं केंद्रित जो दृष्टिकोण होता है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा.
That is a point of view that's just to do with me, what I want, and what pleases me.
तो इस प्रकार से सोचना कि मेरा दृष्टिकोण मुझे क्या चाहिए, मुझे किस बात से खुशी होती, इस प्रकार से सोचना.
So, for instance, we say, they've hurt me.
एक उदाहरण के स्वरूप हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया.
And we feel very upset and very angry even.
तो हमें बहुत ही निराशा होती है, बहुत ही गुस्सा आता है.
And we're concentrated on our own feelings.
और हम हमारी जो भावना है उसी के ऊपर एकाग्र होते हैं.
But what about them?
लेकिन उनके बारे में क्या?
What about what's going on in their minds?
उनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में?
If somebody hurts you, it's usually because they feel hurt themselves.
अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, तो अक्सर ये इसलिए होता है कि उन्हें स्वयं को किसी प्रकार से नुकसान हुआ है, उन्हें कोई दर्द पहुंचा है, इसलिए ऐसा होता है.
Or they just didn't mean to. They didn't realize they were hurting you.
तो उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं. उसका वो अर्थ भी नहीं होता.
But we don't think about that.
लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचते.
We only think about our own suffering, our own pain.
लेकिन हम अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है, उसके बारे में ही सोचते हैं.
And then again, when we get disillusioned, what's going on there? I want them to behave like I think they should. And I feel bad because they're not behaving like that. But we don't think about them. We don't think, well, if they're behaving badly, that must be hurting them.
और हम ये नहीं सोचते कि वो बुरी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, इससे उन्हें नुकसान पहुंच रहा है.
That they're behaving like that because they don't understand how they could behave.
वे इस प्रकार से बुरा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं वो किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं.
We don't think, well, what do they need in order to be happy?
वे ये नहीं जानते कि सुख में रहने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, सुख क्या है, इसको आपको समझ नहीं पा रहे.
So when we fall into this complaining state of mind, it's because we haven't thought about the other people.
तो जब हमारा मन इस प्रकार से शिकायत करने लगता है, शिकायतों से भरा होता है, तब दूसरे जो लोग हैं उनकी क्या समस्या है इसके बारे में हम नहीं सोचते.
So the change that needs to take place is from a selfish to a selfless point of view.
तो परिवर्तन यहाँ आना चाहिए कि जो बहुत ही स्वार्थी हमारा जो दृष्टिकोण है, वहाँ से अब निस्वार्थ ऐसा दृष्टिकोण की तरफ जाना चाहिए.
In the selfish point of view, you don't consider other people.
और स्वार्थी दृष्टिकोण ऐसा होता है जहाँ आप औरों का विचार नहीं करते.
In the selfless point of view, you consider other people as well as yourself.
और जब इस प्रकार से निस्वार्थ दृष्टिकोण होता है, तो आप औरों को जिसे आप स्वयं हैं, इसके इस प्रकार से देखते हैं.
So that's the shift that needs to take place in us.
तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन होना आवश्यक है.
It's interesting looking at you all now.
अभी इस समय आप सभी को देखना बहुत ही रोचक लगता
है. You all look rather serious.
आप सभी लोग बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं.
So it's obvious that the things that I've been saying, you each know about.
और ये बहुत ही स्पष्ट है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आप हर एक आदमी जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ.
Each of you can think of something in your own experience, can't you?
हर एक जो व्यक्ति है, स्वयं के अनुभव की कोई ऐसी बात है जो सोच रहा है नहीं.
You can think of the way you felt when somebody's hurt you in the order.
संगम में जब किसी ने आपको इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया, कुछ दर्द दिया है, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे.
You can think of occasions when you felt disillusioned by order members.
या कोई कर्मचारी की वजह से आपको बहुत ही मतलब बुरा लगा है, ऐसा कोई वाक्य आपको याद आ रहा होगा.
And I think this is an issue that the order needs to face up to now.
और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी संघों को इसका सामना करना होगा।
And we need to come out of this, move on to another level.
तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा और एक दूसरे स्तर पर जाना है।
That means we need to go much further in our own spiritual life and practice.
इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारा स्वयं का जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारा जो आचरण है, इससे और भी हमें आगे जाना है।
And the way I think of this is we need to take the Bodhisattva ideal much more seriously.
और मुझे ऐसे लगता है कि इसमें बोधिसत्व जो आदर्श है, इसको और भी अधिक गहराई से, गंभीरता से हमें लेना।
We need to take much more seriously our commitment to being Bodhisattvas.
तो बोधिसत्व होने के लिए हमारी जो कटिबद्धता है, इसको हमें और भी गंभीरता से लेना।
We need to go beyond the selfish mind to the Bodhicitta.
तो जो स्वार्थी मन है, उससे हमें बोधिचित्त की ओर जाना पड़ेगा।
And the bodhicitta is that mind that considers both your own needs and the needs of others.
और बोधिचित्त एक ऐसा मन है जो आपके मन की क्या आवश्यकता है, औरों के मन की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में विचार करता है।
This is what we need to be trying to develop if we want to go beyond the pain and suffering of complaining.
और जो भी मतलब शिकायतों से जो भी हमें दर्द होता है, जो भी हमें दुख पहुंचता है, उसके अगर पार हमको जाना होगा, तो इस प्रकार का दृष्टिकोण हमें अपनाना पड़ेगा।
And this is what we all committed ourselves to.
और यही जो चीज़ है, इसके लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं।
We've all been ordained.
हम सभी लोग दीक्षित हुए हैं।
We've all been witnessed as effectively going for refuge.
हम सभी को साक्ष्य दिया गया कि हम परिणाम पर रूप से शरणागमन कर रहे हैं।
Going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha is a commitment to selflessness.
बुद्ध धम्म संघ को इस प्रकार का शरणागमन करना एक प्रकार का हमारा कटिबद्धता है कि जहां हम इस प्रकार से निस्वार्थ होते हैं।
It's a commitment to realizing anatman.
ये इस प्रकार का हमारा एक कटिबद्धता है जहां अनात्मन जो है उसको हम समझ रहे हैं।
That's what vipassana means.
विपस्सना का यही अर्थ होता है।
It means becoming selfless.
इसका अर्थ होता है कि जहां इसी प्रकार का स्वार्थ न हो, इसी प्रकार का स्व न हो।
It means considering others as well as yourself.
इसका अर्थ ऐसा होता है कि और जो है, जैसे आप स्वयं हैं, उसी प्रकार से औरों के बारे में सोचो।
And we've committed ourselves to that movement towards anatta.
और उसी क्षण हमने जो अनाता है उसके लिए हमने स्वयं को समर्पित किया, उसके प्रति हम कटिबद्ध हुए।
At the end of our ordinations, we recited the verses of acceptance.
हमारे दीक्षा के पश्चात हम उसके स्वीकृति की जो गाथा है उसको हम पठन करते हैं।
We said, for the benefit of all beings, I accept this ordination.
हम कहते हैं कि सभी प्राणी मनुष्य के कल्याण के लिए ये दीक्षा मैं ग्रहण करता हूँ।
So we committed ourselves to that bodhisattva perspective.
तो हमने ये जो बोधिसत्व का जो बोध है या बोधिसत्व का जो दृष्टिकोण है, इसके लिए स्वयं को कटिबद्ध किया है।
Spiritual development is a development in increasing selflessness.
आध्यात्मिक विकास इसका मतलब होता है कि और हम जो निस्वार्थ हमारा मन है उसकी तरफ बढ़ना।
And of course, this is also represented in Baba Sahib's own teaching.
और अर्थात बाबा साहब की जो शिक्षा है, उसमें भी यह बात हमें दिखाई देती है।
He says in those four vows, there are beings without limit. Let us take the vow to convey them all across.
तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, उसमें प्रतिज्ञा कहती है कि अनगिनत ऐसे प्राणी हैं, तो हम इस प्रकार की प्रतिज्ञा करें कि उनको हम बहुसागर पार ले जाएं।
So what we're trying to do is to move from our selfish mind to the mind of bodhicitta.
तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्वार्थी मन है, उस स्वार्थी मन से बाहर आकर जो बोधिचित्त का मन है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं।
And that takes us beyond the pain that we experience when other order members hurt us.
और फिर जो दूसरे ब्रह्मचारी हमें इसी प्रकार का जो दर्द पहुंचाते हैं, उससे हम थोड़ा सा परे जा रहे हैं, उससे हम बाहर निकल रहे हैं।
It takes us beyond the disillusionment we feel when other order members don't behave as we think they should.
और जब हम ऐसा चाहते हैं कि दूसरा जो ब्रह्मचारी है, जैसा हम चाहते हैं ऐसा उन्होंने बर्ताव करना चाहे, इससे जो भी हमें संभ्रम पैदा होता है, उससे हम बाहर निकलते हैं।
So that's quite useful.
ये बहुत ही उपयुक्त ऐसी बात है।
As soon as you feel that pain, as soon as you want to complain, you know you've got to go further.
जैसे ही आपको लगता है कि आपको कुछ दर्द हुआ है, जैसे ही आपको लगता है कि आपने कुछ शिकायत करनी चाहिए, उसी समय आपने दूसरे स्तर पर जाना चाहिए।
Now this is for yourself. It's not that when somebody else starts complaining about you, you say to them, oh, you've got to go higher. In other words, everybody else has got to go up, you just remain the same. But when you feel like complaining, that's your sign, you've got to go higher.
और जब आपको लगता है कि आपने शिकायत करनी चाहिए तब ये आपके लिए कि आपने स्वयं अभी ऊंचा उठना चाहिए.
And you will feel much happier.
और आपको और अधिक आपको आनंद होगा और अधिक आप सुख मिलेगा.
The complaining mind is a painful mind.
शिकायत करने वाला मन ये बहुत ही दुखदायी मन होता है.
So, how do we do it?
तो ये किस प्रकार से हम करेंगे?
That's what this retreat is all about.
तो ये शिविर इसीलिए है.
How to move from the complaining, selfish mind to the mind of the Bodhisattva.
तो ये जो बहुत ही स्वार्थी शिकायत करने वाला जो मन है, वो मन जो है, बोधिसत्व का जो मन है, उस तरफ हम कैसे बढ़ें?
Well, you could say that all our spiritual practice is directed to that end.
आप ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है, वो उसी दिशा में बढ़ने के लिए.
The pranipat dhyan sadhana, what's that? Prostration practice. That's to do with trying to raise the bodhicitta. When you're doing your sadhana, you're trying to make contact with the bodhisattva. When you're reporting in and discussing in your group, you're trying to understand yourself better so that you can go beyond yourself.
जब आप अपने गीतों में मनोगत व्यक्त करते हैं तो आप स्वयं को अधिक अच्छा समझने का प्रयास करते हैं ताकि और भी उससे ऊंचा उठा जा सके.
Then we're going to be doing the bodhicitta practice.
और फिर हम बोधिचित्त की साधना करने वाले
हैं. I'll explain that fully this afternoon.
तो इस दोपहर को मैं उसको पूरी तरह से उसका स्पष्टीकरण करूंगा.
But when you're doing that practice, you are learning to develop the mind of the bodhisattva.
और जब वह साधना आप करेंगे तो एक प्रकार से बोधिसत्व का जो मन है वो निर्माण करने
Then the sevenfold puja is the expression of the bodhisattva's mind.
Saptang puja, ye bodhisattva ka jo man hai, uske abhivyakti
hai. It's an expression of the mind of the bodhisattva Shantideva.
To bodhisattva jo Shantideva hai, unki jo abhivyakti hai, unka ye man hai.
When we say those words, we're learning to develop that attitude.
Jab un shabdon ko hum kehte hain, to usi prakar ka drishtikon apnane.
We're confessing our faults and rejoicing in merits. Not boasting about ourselves and complaining about other people. That's the opposite of puja. In the puja, we're developing the bodhisattva's mind. But all of this is very helpful and important. But our work needs to be much more immediate and practical. We need to be watching those points at which we want to complain.
उस क्षण को जब हमें लगता है कि हमें शिकायत करनी चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए.
Those points at which we feel hurt.
ऐसा क्षण जब हमें लगता है कि हमें किसी प्रकार का दर्द पहुंचा है, कोई नुकसान पहुंचा है.
And we need to be using those as the way to go upwards.
और उसका उपयोग हमें करना है ताकि इससे हम कुछ दूसरे स्तर पर जा सकें.
We need to be training our minds in the selfless attitude.
हमारे मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जहां वह निस्वार्थ ऐसा मन बनता है.
We need to be training our minds in bodhicitta.
तो बोधिचित्त के लिए हमारे मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है.
So in the Indian tradition which survives in Tibet, there is a very specific set of teachings about this.
तो भारतीय परंपरा में जो परंपरा भी तिब्बत में अभी भी जीवित है तो उसकी कुछ विशेष इस प्रकार की कुछ शिक्षा है.
It's called in Tibetan Lojong. That means mind training. And so we're going to be looking at these eight verses for training the mind. So this is not a know your mind retreat. This is a train your mind retreat.
तो ये मन को प्रशिक्षित करना ये शिविर
है। You could even say it's a change your mind retreat.
या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मन को परिवर्तित करो ये शिविर।
It's a step onwards from know your mind.
तो मन को जानो इस शिविर से हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं।
We spent 3 years knowing our minds more and more fully.
3 साल हमने इसमें लगाए हैं अपने मन को अधिक से अधिक पूरी तरह से हम जानें।
Now it's time to seriously train our minds and change them.
तो अभी समय है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें गंभीरता से उसको बदलने का प्रयास करें।
Now these verses are written by a Tibetan teacher who lived in the 12th century.
तो ये जो गाथाएं हैं ये तिब्बतन गुरु ने लिखी हैं जो 12वें शतक में रहे थे।
His name is Langritangpa. Langritangpa. Geshe Langritangpa. And he is the spiritual great grandson of the great Indian teacher Atisha.
तो ये जो भारतीय गुरु अतीश है उनके बहुत ही मतलब ऐसे जिसको हम पोते कहते हैं ग्रैंडसन को क्या बोलेंगे
पोते के पोते and Atisha, yes, was a great Indian guru who lived in the 10th century.
Atisha ये बहुत ही महान ऐसे भारतीय गुरु थे जो 10वें शतक में रहे थे.
He was born in Bengal and then travelled to Indonesia.
वे बंगाल में उनका जन्म हुआ और इंडोनेशिया में वहाँ उन्होंने वहाँ तक सफर किया।
And he studied under the great Dharmakirti.
और जो महान धर्मकीर्ति है उनके पास उन्होंने अभ्यास किया।
He came back to India and became a great teacher at a big monastery in Bihar.
और फिर वे भारत में वापस आए और फिर बिहार में एक बड़ी जो मोनेस्ट्री थी बड़ा जो मठ था वहाँ वे एक गुरु बने शिक्षक बने।
It was the monastery of Vikramashila.
और ये विक्रमशिला ये मठ था।
And then he was invited to go to Tibet.
और उसके पश्चात उन्होंने तिब्बत जाने के लिए निमंत्रण
दिया। Tibetan Buddhism had begun to be very, very corrupt and almost to disappear.
और तिब्बतन जो बुद्ध धर्म है उस समय बहुत ही मतलब भ्रष्ट हो चुका था और जैसे वह नष्ट होने के मार्ग पर।
And he spent the last 12 years of his life in Tibet and died there.
और उनके जीवन के आखिरी जो 12 वर्ष है उन्होंने तिब्बत में बिताए और वहीं उनकी मृत्यु हुई।
And he's very highly regarded in Tibet.
और तिब्बत में उन्हें बहुत ही सम्मान से देखा जाता
है। And of course he's on our refuge tree.
अर्थात वे अपने शरण वृक्ष पर भी।
And he was apparently a very very disciplined man.
अभी बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है कि वे बहुत ही शिस्तबद्ध ऐसे व्यक्ति।
He did a very great deal of meditation practice.
और वे बहुत अधिक ध्यान साधना करते थे।
He was also very devoted to the Buddhas and Bodhisattvas.
बुद्ध और बोधिसत्व के लिए उनमें बहुत अंदर बहुत ही श्रद्धा थी।
But he's also a very kind man.
और बहुत ही मतलब करुणावान।
And he was very kind to all his disciples.
और उनके जो शिष्य हैं उनके प्रति भी बहुत ही करुणा भरे नजर से देखते।
It's quite unusual, isn't it, to get somebody who's both kind and disciplined?
अभी वही व्यक्ति बहुत ही शिष्टबद्ध है और उसी प्रकार उसी समय बहुत ही करुणावान है ऐसा देखना बहुत ही कठिन है।
But this is what he was like.
लेकिन वे इसी प्रकार से।
And he considered going for refuge to be the most important thing in spiritual life.
और वे ऐसा सोचते थे कि आध्यात्मिक जीवन में शरण गमन करना ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बात।
And so he was known as the refuge guru.
और इसलिए शरण गमन के गुरु इस प्रकार से उनकी प्रसिद्धि थी।
So I thought, well, this sounds a bit like our own Bhante Sangharakshita.
इससे ऐसा दिखा देने जैसे अपने स्वयं Bhante Sangharakshita जी उनके समान ही।
And maybe that's partly why Bhante's put him on the refuge tree.
और शायद यही मुख्य बात है कि बुद्ध जी ने उन्हें अपने शरण वृक्ष में रखा।
Anyway, this teaching that Langritangpa wrote down in the 8 verses comes from Atisha.
तो ये जो शिक्षा है लंगतरंपा ने जो अपने किताब में लिखा है 8 गाथा है ये अतीशा से आता है।
Atisha trained his own disciples in this form of mind training.
अतीशा जो है उन्होंने अपने शिष्यों को ये इसी प्रकार से मन को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया।
And Langritangpa wrote down the essence of that teaching.
और लंगरतंपा जो है वो जो शिक्षा का सार है उस सार को उन्होंने लिखा।
And really it's very simple indeed.
और सही में देखा जाए तो बहुत ही सरल।
It's least simple to read the words and understand what they mean.
कम से कम उन शब्दों को पढ़ना उसका अर्थ जानना ये बहुत ही सरल है.
But to actually realize them is very difficult indeed.
लेकिन वास्तव में उसको समझना ये बहुत ही कठिन ऐसी बात है.
And what these verses do is they teach us how to become a bodhisattva in this very moment.
तो ये जो गाथा है हमें ये बात सिखाती है कि इसी क्षण इस प्रकार से हम बोधिसत्व हो सकते हैं.
Sometimes we think of becoming a bodhisattva.
कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमें बोधिसत्व बनना है.
And we think one day we'll sit on a beautiful lotus in the midst of the blue sky.
तो कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सुंदर ऐसे आसन पर हम बैठेंगे, बहुत ही सुंदर ऐसा नीला आकाश जो उसके मध्य में हम रहेंगे.
You know, sometime long in the future.
और कभी-कभी मतलब भविष्य में आगे ऐसा होगा.
Meanwhile, we'll do some effort.
और बीच में हम कुछ प्रयास करेंगे.
But we think of being a bodhisattva sometime in the future.
और हमें ऐसा लगता है कि कभी तो भी भविष्य में हम बोधिसत्व होंगे.
But this is saying you can be a bodhisattva now.
लेकिन ये कह रहे हैं कि इसी समय अभी हम बोधिसत्व हो सकते हैं.
And this is how you train yourself.
और इस प्रकार से हम को प्रशिक्षित कर सकते हैं.
So what I want to do now is remind you of how we normally behave towards other people.
तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि सर्वसाधारण रूप से हम और लोगों के साथ किस प्रकार से हम बर्ताव करते हैं इसके बारे में.
The text is all about cherishing other living beings.
तो ये जो मतलब ग्रंथ है, ये जो लिखा है, इस बारे में है कि औरों का एक प्रकार से हमें परवरिश करनी चाहिए.
But how do we normally act?
लेकिन सर्वसाधारण हमारा बर्ताव किस प्रकार से होता है?
How do we act when we were coming here?
जब हम यहाँ आ रहे थे तो किस प्रकार से हम बर्ताव करते?
How did we act when we arrived here?
जब हम यहाँ आ गए उस समय हमारा बर्ताव कैसा था?
How have we acted towards others on this retreat?
इस शिविर में औरों के साथ हम किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं?
Well, I've found a bunch of gundas wandering around.
तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे जो है इधर आसपास घूम रहे
हैं. They were just at the railway station, I think.
तो मुझे लगता है कि वो रेलवे स्टेशन के पास होंगे.
So I've asked them to come and just show us how they behave.
और मैंने उनसे कहा कि भई यहाँ आकर आप बताइए कि किस प्रकार से आप बर्ताव करते हैं.
So, what a bunch of gundas.
तो किस प्रकार के गुंडे थे?
But how did you behave on your way here?
लेकिन जब आप रेलवे में वहाँ होते तो आप किस प्रकार से बर्ताव करते?
When you were on the railway station, did you treat people like people?
जब आप स्वयं रेलवे स्टेशन पर होते तो लोगों को लोगों की जैसे आप क्या बर्ताव करते?
Did you see them?
क्या आप उनको देखते हैं?
Did you see them as individuals, as human beings? We so often in our lives we just don't see people. We don't understand their position. So even on that railway station, you've got the chance to practice bodhicitta.
तो उस रेलवे स्टेशन पर भी आपके लिए मौका है कि बोधिसत्व का ये जो आचरण है ये आप करें.
And what they demonstrated then was not unreal.
उन्होंने जो कुछ यहाँ बताया है, प्रदर्शित किया है, ये कोई मतलब अवास्तव है या गलत है ऐसी बात नहीं.
I've seen those people.
मैंने उन लोगों को देखा है.
I've seen those people behaving like that on the platform.
मैंने देखा है कि प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार से लोग बर्ताव करते हैं.
I've been one of them.
मैं भी उनमें से एक था.
I've been like that towards other people.
मैं भी उस प्रकार से उन लोगों के साथ कभी मैंने बर्ताव किया.
So the text asks us to cherish all beings.
तो ये ग्रंथ हमें बताता है कि हर एक जो प्राणी है उसकी हम परवरिश करें.
It says, may I always cherish all beings.
ये कहता है कि मैं हर वक्त जो भी मतलब प्राणी है हर एक की मैं परवरिश करूं.
With the resolve to accomplish for them the highest good.
तो इस प्रकार का मेरा संकल्प है कि जो बहुत ही ऊंचा अच्छा जो है वो उनके लिए मैं चाहता हूं.
That is more precious than any wish fulfilling jewel.
तो किसी भी मतलब इस प्रकार से जो
Chaitanya.
So
you're trying to gain for them, to accomplish for them the most wonderful thing that could possibly be. What is the wish-fulfilling jewel? You know that in Hindu mythology, it's said that, I can't remember which god it is, but one god has the wish-fulfilling jewel. If you have that jewel, anything you want, you get. It fulfills all your desires instantly. So it seems to be the most wonderful thing you could possibly have. But what you want for other beings is even more precious than that wish-fulfilling jewel. So what could be more precious than the thing that fulfills all your wishes? Enlightenment. Nirvana. Nirvana means the complete satisfaction of all your desires. So you feel that everything you need is fulfilled. In a way, you're beyond even needing anything. So you're determined, you take the vow to get for people what will most fulfill them. This is Baba Sahib's first vow. That's the most important of the four vows. It's the vow to carry all beings across. So you take the vow to cherish all beings. All beings. Not just these beings and not those ones. Not apne log and apne log nahi. Apne log and apne log nahi. It's all beings. That's what the vow means. So that wasn't the way that Mr. Kabragade there was performing. Or Mr. Joshi over there, wherever he is. They weren't behaving like that. They weren't interested in the other beings. They didn't see their needs. They think, oh, well, they're just servants. They're just low people. Don't even take any notice of them. Don't see them. But the Bodhisattva sees every single person as a unique human being. And tries to gain for them what will most fulfill them, most deeply. And that the text says, may I cherish all beings. The English word cherish is a very beautiful word. It means care for, treat as dear and loved. It means taking great care to look after. It's like a mother with her children. It's like lovers. Looking after each other very dearly, very carefully. So you want to care to cherish all beings.
तो आप सभी जो प्राणी हैं उनकी परवरिश उन सभी की मतलब आप एक प्रकार से देखभाल करना चाहते हैं.
But how do you do this?
लेकिन ये किस प्रकार से आप करेंगे?
Well, of course, we teach them the Dhamma and we do social projects and so on.
अर्थात हम उन्हें धर्म पढ़ाते हैं, कुछ सामाजिक प्रकल्प हम उनके लिए चलाते हैं.
That's all very important.
ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं.
But right now, we're in the midst of beings.
लेकिन इसी क्षण हम लोगों के साथ में हैं.
Right now, on this retreat, in this retreat center, we're in the midst of beings.
तो अभी इसी क्षण शिविर केंद्र में हम लोगों के साथ में हैं.
What does cherishing mean right now?
तो परवरिश करना अभी इसी क्षण इसका क्या अर्थ होता है?
Here we are, each of us, surrounded by everybody else in this room.
अभी हम यहाँ हैं, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं.
The text is saying we should cherish all beings.
तो ये ग्रंथ ऐसा कहता है कि हम जो भी लोग हैं उनको परवरिश करें.
So how do we do that?
तो ये हम किस प्रकार से करेंगे?
Well, the short answer is we do it by trying to see what their needs are and help them fulfill them.
तो इसका संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार से होगा कि हम देखें कि उनकी आवश्यकताएं क्या है और उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें.
We see everybody as being motivated by the desire to satisfy their own needs.
तो हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो है वह उनकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो इस प्रकार से वो प्रेरित है.
All the time people are trying to get happiness, get satisfaction.
हर वक्त लोग प्रयास करते रहते हैं कि उन्हें कुछ सुख मिले, कुछ संतुष्टि मिले.
Even when they do something that's really unskillful in Buddhist terms, they're doing it because they think that will fulfill them.
भले ही कोई अकुशल ऐसा कार्य कर रहे हैं अपने बौद्ध के दृष्टिकोण से, लेकिन इसलिए कर रहे ताकि उन्हें लग सकते इससे उन्हें कुछ पूर्णता मिलेगी, इससे उन्हें कुछ सुख मिलेगा.
But there's been a terrible case in England just recently.
अभी हाल ही में इंग्लैंड में बहुत ही भयंकर ऐसी मतलब बात
हुई. A doctor is found to have killed some 200 of his patients.
तो डॉक्टर जो है अपने 200 ऐसे जो उनके रोगी है, पेशेंट है, उनको कुछ बात कह रहे हैं.
And he managed to do it over about a 10-year period without anybody noticing.
और
over 10 years, yeah.
तो 10 साल तो इस प्रकार से कर रहे थे, लेकिन किसी के बाद ये ध्यान में नहीं आया.
And they were usually old ladies, and he'd just find some way of killing them.
और वो मतलब ऐसे बहुत ही बूढ़ी औरतें थी और इस प्रकार से उन्होंने कुछ रास्ता खोजा कि इस प्रकार से उनको वो कहना चाहिए.
Well, when you hear something like that, you think, how could anybody do that?
तो जब आप सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि ये बात आप किस प्रकार से कर सकते हैं?
How could anybody act in that way?
तो इस प्रकार से कोई कैसे बर्ताव कर सकता है?
It seems almost impossible to understand how somebody could do that to people who done them no harm, who are completely innocent.
तो ऐसे लोग जो मतलब बिल्कुल किसी प्रकार का उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, बिल्कुल मतलब निरागस है, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है?
But I heard a psychologist talking about what that man was, why that man did it.
तो एक मनोवैज्ञानिक मतलब इसके बारे में कहने लगे कि उस व्यक्ति ने यह बात क्यों की, इसके बारे में चर्चा कर.
And it obviously gave him some sort of satisfaction. It gave him some sort of sense of fulfillment.
तो एक प्रकार से कोई पूर्णता या एक प्रकार का सुख देने का प्रयास कर.
It gave him a feeling of power. It gave him a feeling of power.
एक प्रकार का मतलब उससे उसके पास कोई शक्ति है, इस प्रकार का उसको महसूस हो रहा.
So that fulfilled something that he wanted.
तो जो वो चाहता था तो उससे मतलब इस बात से उसकी वो बात जो है वो पूर्णता हो.
Even when people do really bad things, they're doing it because they feel that it will satisfy them.
तो भले अगर कोई लोग बहुत ही बुरी ऐसी बात करते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि उससे उन्हें कुछ संतुष्टि मिलेगी, संतोष होगा.
Even the worst possible things that people do, they do because they think it will bring them satisfaction.
तो बुरी से बुरी अगर कोई बात करता है तो लोग को ऐसा लगता है कि इससे उन्हें कुछ संतुष्टि संतोष मिलेगा.
It's the same for us.
तो यही बात हमें भी लागू करती
है. We want a happy and satisfying life.
हम चाहते हैं कि हमारा बहुत ही सुखी और एक अच्छा जीवन हो.
We want to fulfill ourselves.
हम चाहते हैं कि हम हमें पूर्णता आए या हम हमारी जो आवश्यकता है वो परिपूर्ण हो जाए.
But just think how often we do things that hurt others and hurt ourselves.
तो आप सोचिए कि किस प्रकार से हम जो चीजें करते हैं उससे स्वयं का नुकसान होता है और औरों को नुकसान पहुंचता है.
We don't think, oh, I will do that because that will cause me harm.
तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि ये जो मैं करूंगा इससे मुझे कुछ नुकसान पहुंचेगा.
We're all trying to fulfill ourselves.
तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए.
But we're just confused about how to do it. We don't understand ourselves very fully or deeply. So what we do doesn't fulfill us, it harms others, it harms ourselves. So cherishing living beings means understanding what needs they're trying to fulfill.
तो जो भी लोग हैं उनकी देखभाल करना परवरिश करना इसका मतलब ऐसा होता है कि उनकी क्या आवश्यकता है उसको समझना उसको उसकी पूर्तता करना.
Maybe they're just trying to fulfill their physical needs. Maybe they're just trying to fulfill their physical needs.
तो जो भी उनकी शारीरिक जो भी आवश्यकता है शायद उसकी पूर्तता करने का वो प्रयास कर रहे हैं.
Maybe they need air.
शायद उन्हें कुछ हवा की आवश्यकता है.
Maybe they need food.
शायद उन्हें कुछ भोजन की आवश्यकता
है. Or water.
या पानी की आवश्यकता है.
Or rest.
या फिर कुछ विश्राम की आवश्यकता.
They're trying to look after their bodies.
वे अपने शरीर जो है उसकी देखभाल करने की कोशिश कर रहे
हैं. All of us want to be comfortable in our bodies.
हाँ, तो उनका जो शरीर है वो आराम में रहे ये उनकी एक आवश्यकता है. भी चाहते कैसा हो.
We all try to satisfy our physical needs.
हम सभी लोग जो भी हमारी शारीरिक आवश्यकता है उसकी पूर्तता करने का हम प्रयास करते हैं.
Maybe they're trying to satisfy their social needs.
शायद उनकी जो कुछ सामाजिक आवश्यकता है उसकी पूर्तता करने का भी प्रयास करें.
They want respect from other people.
वे चाहते हैं कि और लोग उनका सम्मान करें.
They want to be loved by other people.
वे चाहते हैं कि और लोग उनसे प्यार करें.
They want to be part of a society.
वे चाहते हैं कि उस जो समाज उस समाज का वे भी एक हिस्सा बने.
They want to participate in social life.
तो जो भी सामाजिक जीवन है उसमें वे सम्मिलित होना चाहते हैं.
Maybe they want support and help.
शायद वे चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार से कुछ मदद मिले उन्हें किसी प्रकार से लोगों से कुछ हेल्प.
Even if they're going about it in a very strange way, maybe that's what they really want.
तो शायद बहुत ही विचित्र प्रकार से कुछ वो बर्ताव कर रहे होंगे लेकिन यही उनकी आवश्यकता है वे और उसे चाहते हैं.
So the Bodhisattva tries to understand what it is that's leading people to act as they do.
तो बोधिसत्व ये कोशिश करता है कि कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से ये लोग इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं इस प्रकार से ये कृति कर रहे हैं.
Well, like that that terrible murderer.
अभी जैसे वो भयंकर जो ऐसा क्षण है इसके बारे में हम देखेंगे.
He wanted to feel that he was controlling something.
तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी चीज का वो नियंत्रण कर रहा
है. I don't know what his motivation was, but let's say that's what it was.
तो उसका क्या उद्देश्य था ये तो नहीं मालूम लेकिन हम समझेंगे कि शायद वो ऐसा ही चाह रहा
है. Don't you want to be in control? Don't you want some power and initiative?
तो क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि आपके नियंत्रण में सब चीज़ हो, आपकी मतलब अगुवाई रहे, आपके हाथ में हर एक बात हो?
Sometimes when you try to satisfy that desire, you hurt other people.
और कभी-कभी ये जो आपकी इच्छा है, इसकी संतुष्टि करने के लिए आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं.
In his case, it became particularly twisted and distorted.
लेकिन इस केस में इस विषय में हम देखते हैं कि उनका मन जो है बहुत ही एक प्रकार से विचलित हो गया बहुत ही मतलब एक प्रकार से विकृत हो गया.
But we're all basically the same.
लेकिन हम सभी लोग उसी प्रकार से.
We're all human beings who want to be happy, who want to be fulfilled.
हम सभी मानव हैं जो चाहते हैं कि हमें संतोष मिले हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो.
And we all express ourselves in life in an attempt to gain happiness and satisfaction.
तो हमारे जीवन में हम स्वयं के व्यक्ति इस प्रकार से करते हैं ताकि हमें सुख मिल सके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके.
For instance, here am I and there are you.
अभी उदाहरण के स्वरूप यहाँ मैं हूँ और वहाँ आप हैं.
I'm giving a talk.
मैं प्रवचन दे रहा हूँ.
Well, that talk, giving this talk, gives me satisfaction.
ये प्रवचन देने से मुझे एक प्रकार का संतोष मिलता है.
I want to understand the Dhamma more deeply.
मैं चाहता हूँ कि मैं धर्म को और भी गहराई से समझ सकूँ.
And in trying to communicate it to you, I have to understand it more deeply myself.
और इसको आपको बताने के लिए मुझे स्वयं को और गहराई से इसको समझना आवश्यक है.
And I have inspiration in the Dhamma.
और धर्म में मुझे बहुत ही प्रेरणा है.
So I want to express that inspiration.
तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो प्रेरणा है इसको मैं अभिव्यक्त करूँ.
But I also want to help. I want to contribute to the well-being of others.
लेकिन उसी समय मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा कुछ योगदान दूँ, मेरी कुछ मदद करूँ औरों के.
So I get a lot of happiness, a lot of satisfaction because I'm meeting those particular desires and needs.
तो ये भी लोगों की जो भी आवश्यकता है, उनकी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करते हुए मुझे बहुत ही संतोष मिलता है, मुझे बहुत ही खुशी होती है.
Well, you're all sitting there.
तो अभी आप सब वहाँ बैठे हुए हैं.
And you're listening.
आप सुन रहे हैं.
I think you're listening anyway.
मैं समझता हूँ
and well, presumably some needs are being met there.
और ऐसा हम देख सकते हैं कि आपकी कुछ आवश्यकता यहाँ पूरी हो रही है।
But I can't really say what it is that you're getting from being here.
अभी यहाँ रहने के बाद आप वास्तव में आपको क्या मिल रहा है ये मैं कह नहीं सकता।
Perhaps you want to understand the Dhamma more deeply.
शायद धर्म को आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं।
And you feel that through listening to me, you're getting a deeper understanding of the Dhamma.
और शायद मुझे सुनने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि धर्म को और भी आप गहराई से समझ रहे हैं।
Perhaps you want to see how you can practice more deeply.
शायद आप ये देखना चाहते हैं कि और भी गहराई से आप आचरण किस प्रकार से कर सकते हैं।
So you hope that through listening to me, you'll understand that better.
और आप फिर ऐसी आशा करते हैं कि मुझे सुनने के पश्चात इसे आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकें।
We're all of us motivated by desires that we all have.
हम सभी लोग हमारी जो भी इच्छा है इन इच्छाओं से हम प्रेरित रहते हैं।
Our skillful action is the satisfaction of those desires in a way that does no harm to others and no harm to ourselves.
तो हमारी जो भी कुशल कृतियां होती है तो हमारी जो भी इच्छा है उसका संतोष भी होता है जिससे स्वयं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता औरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
Unskillful actions are the satisfaction of those needs and desires in ways that harm others or ourselves.
हमारी अकुशल जो कृतियां है इससे हमारी जो भी आवश्यकता इच्छा है उसकी पूर्ति होती है लेकिन इससे हमारा भी नुकसान होता है औरों का भी नुकसान होता है।
So if we want to cherish all beings, we need to see the needs that drive them.
अगर हम लोगों की देखभाल करना चाहते हैं परवरिश करना चाहते हैं तो उनकी क्या आवश्यकता है उसे हमें देखना होगा।
Despite the unskillful ways they may do that, we need to see the needs that drive them.
भले ही कोई अकुशल कार्य कर्म वो करते हैं इसके बावजूद उनकी क्या आवश्यकता है वो हम देखते हैं।
That Mr. Joshi who was having his shoes cleaned.
अभी वो श्री जोशी जो है जो अपना जूता या पॉलिश कर रहे थे।
Well, why was he acting like that?
तो इस प्रकार की क्रिया क्यों कर रहे थे?
Well, presumably he needed to feel had some respect and value.
अभी ऐसा दिखाई देता है जैसे उनको लगता है कि मेरा कुछ सम्मान होना चाहिए मेरा कुछ तो भी यहाँ मतलब मूल्य होना चाहिए।
So he had to show he was a really big man.
तो इस प्रकार का दिखावा करा था कि वो बहुत बड़ा आदमी है।
Well, that was unskillful.
तो ये अकुशल ऐसी बात।
But the need is one we all have.
लेकिन एक ऐसी आवश्यकता है ये आवश्यकता हम सभी लोग महसूस करते हैं।
We all want respect.
हम सभी चाहते हैं कि हमारा सम्मान
हो। Mr. Kabragade was just the same.
अभी जो श्री कोपरागढ़ है वो भी उसी का
था। He just wanted to be a big man with a big telephone.
तो एक बड़े टेलीफोन के साथ एक बड़ा आदमी दिखना चाहते
हैं। And he wanted to tell everybody on the platform that he'd got a mobile phone.
और प्लेटफॉर्म पर वो सभी को ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास मोबाइल फोन
है। Well, we all want to be respected by other people. We all want to be appreciated by other people.
तो हम सभी लोग इस प्रकार से चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो हमारी सब लोग जो है प्रशंसा करें।
So we can understand what motivates those people.
तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस बात से प्रेरित होकर ये लोग इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं।
And we can even appreciate them. We can cherish them.
तो हम उन्हें भी समझ सकते हैं उनकी भी हम देखभाल कर सकते हैं परवरिश कर सकते हैं।
So we need to try to understand what's driving people.
तो किस बात से वो प्रवृत्त हो रहे हैं इस बात से प्रेरित हो रहे हैं इस बात का हम समझने का प्रयास।
And we need to realize that what's driving them is the same ultimately as what's driving us.
और ये समझने की आवश्यकता है कि जिस बात से प्रेरित होकर वे लोग इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं यही बात जो है मुझे भी लागू पड़ती
है। None of them are different.
तो हमें कोई फर्क नहीं।
If we can understand people's needs, our attitudes change.
अगर हम लोगों की आवश्यकता समझ सकते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है।
I'll give you an example. Last night the dogs were barking.
कल रात कुत्ते जो है भौंक रहे थे।
We Westerners tend to sleep much more lightly than people do in India.
तो हम जो मतलब पश्चिम के लोग हैं, जैसे भारत के लोग हैं, उसके अलग हम लोग मतलब बहुत ही शांति से सोना चाहते हैं।
We could think about why that is, but this isn't the time. We could speculate on why that is, but this isn't the time.
तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन ये कोई समय नहीं।
But probably none of you heard the dogs barking.
तो शायद आप में से किसी को ये दिखाई भी नहीं दिया होगा सुनाई नहीं देगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं।
But there were 1 crore dogs out there barking last night.
तो हर जैसे मानो 1 करोड़ कुत्ते भौंक रहे हैं।
The whole of India was barking.
ऐसा लगा कि पूरा भारत जो है भौंक रहा है।
And well I couldn't get to sleep.
और मुझे नींद ही नहीं आ रही।
So I was thinking, oh, those dogs.
और फिर मैं सोच रहा था कि ये सब कुत्ते
हैं। They're just being mischievous.
और वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए नटखट।
They're just enjoying barking.
और केवल भौंकने में भी आनंद ले।
They're just showing off. But then I thought, no, wait a minute, I've got to give a talk tomorrow on the Bodhisattva ideal. I've got to cherish those dogs too. It's no good just throwing stones at them. I've got to understand them. So I listen. And I realized something. Those dogs were barking because they were frightened. They were barking because they were scared. And as soon as I realized that, I felt relaxed about them. I didn't think that they were just against me. They were expressing their need for security. And then I heard, I think, a tiger growling. And some squealing. So they were frightened. Well, we need to have that sort of attitude to everybody. Whatever they're doing to us, we try to understand their needs. And feel for them as we feel for ourselves. And we need to try then to help them to fulfill their needs. They're just like us. They're striving for happiness. So, this is what it means to cherish all beings. It means to take the person who's in front of you and understand their needs. To empathize with them, to realize that their needs are the same as your needs. And then to do what you can to meet those needs. We've all got needs. We're all sitting here with our own needs in life. Our lives are an attempt to satisfy those needs. So just reflect on your own needs. Think of the needs of those around you on the retreat. Think of the needs of the people in the community. Sometimes we remember the people on the retreat, but we just see the people on the community as in the community as servants. We don't treat them as people. We need to treat people as people. And see their needs. So what I'd like to suggest is that you all start keeping a diary. And in that diary, you try to keep a notice, you try to keep track of how well you do in this respect. Every evening before the puja, just sit down for a while and just reflect on the day. To what extent did you succeed in considering the needs of other people here in this retreat center? And remember, or try to reflect on the occasions when you failed to do that. All the time, every day, we'll neglect the needs of others. Every day we'll forget to cherish other beings. So write down the occasions that you notice when you do this. And write down the occasions when you succeed. And notice the complaining issues in your mind. Try to notice complaining mind. Complaining mind is the key to bodhicitta. When you get complaining mind, you know what you've got to change. So remember those occasions that are in your mind where you feel like complaining. You'll probably find your mind goes back to some resentment, some worry, or something like that. And I'd like to suggest that you each choose one issue like that. Something that's caused you pain and led you to want to complain. It could be something that's going on right now. It could be something that's big that's happened in the past. It could be an election issue. It could be faction in the Sangha. But whatever it is, something that's bothering you that makes you feel like complaining. And we're going to be working with that issue during this retreat. So just watch yourself through the day. It's trying to get an idea of how much you cherish other beings or not. Watch your successes, watch your failures. And choose one issue that makes you feel like complaining. And tomorrow we'll start to work with that issue. So that's what we're going to be doing. We're going to be learning how to cherish living beings. We're going to be helping them to fulfill their deepest needs. We're going to be recognizing their needs and seeing what we can do to help them satisfy them. We're going to see that this means understanding our own needs more deeply first. Then we can identify with them. But please start to work now with those people around you. We've all got needs. We're all trying to fulfill ourselves. We all want to be happy and satisfied in life. So let's work with each other to raise this bodhicitta mind. And I hope that in the course of this, we'll change the way in which we see the world. And from our old behavior, we'll have a new behavior. And we'll behave in a way that meets other people's needs. So my friends now are going to show how you could behave under these circumstances. What they showed you before was before. Now they're going to show you what happens after you've done the mind training.
अभी वो इस बात को बताएंगे कि मन का प्रशिक्षण करने के बाद क्या होता है।